بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به علم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لا نكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وسوسہ کے سلسلے میں بات شروع کی تھی، تو وسوسے کی ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے. کل اس سلسلے میں ضروری چیزیں بتلا چکا ہوں. دوسری قسم وسوسوں کی کہ آدمی کو گناہ کے خیالات اور وساوس آویں، زنا کا خیال آئے، شراب پینے کا خیال آئے، چوری کرنے کا خیال آئے، مختلف گناہوں کے جو خیالات اور وساوس ہیں دل میں، گویا ان گناہوں کو کرنے کا بار بار تقاضا پیدا ہو، اس کے وساوس اور خیالات، اور ان کی وجہ سے بھی آدمی ایک تنگی محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان گناہوں کے خیالات اور وساوس جو غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، یعنی جن کے آنے میں اس آدمی کے اپنے ارادے اور قصد کو کوئی دخل نہیں، جو خود بخود آتے ہیں. حضرت حکیم محمد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے. جو لوگ بالارادہ بالقصد سوچ کر کے خیالات لاتے ہیں اس کی تو اجازت نہیں دیتی شریعت، لیکن غیر اختیاری طور پر بلا ارادہ بلا قصد جو خیالات آتے ہیں، وہ اگر گناہ کے ہیں تو بھی ان کی وجہ سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں. ایک آدمی کے دل میں کسی کے متعلق خیال آیا کہ میں اس کی غیبت کروں، غیبت اس کی برائی لوگوں کے سامنے کرنے کا خیال اور وسوسہ آیا، بار بار دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کروں. یا ایسی چیزیں جو غیبت کے قبیل سے ہیں، تو جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اس کو نکالے گا نہیں، وہاں تک وہ گنہگار قرار نہیں دیا جائے گا. خالی یہ دل میں جو خیالات آئے، وساوس آئے، تقاضا پیدا ہوا، اس تقاضے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا. کسی کے متعلق تہمت کا خیال آیا، کوئی ایسی بات جو اس کے اوپر تہمت کا باعث بن سکتی ہے، وہ جی یوں کہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ایسی بات کہوں فلانے نے ایسا کیا، تو خالی اس خیال کی وجہ سے جب تک کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کرے گا، वहां तक वो गुनहगार करार नहीं दिया जाएगा। किसी के दिल में ख्याल आया किसी औरत के साथ जिना का, ये जो शहवानी ख्यालात का एक मुस्तकिल दिलो दिमाग के ऊपर इस्तेला और गलबा रहता है बाज लोगों को, और बार बार ये तकाजे दिल में पैदा होते हैं, मैं ये काम कर लूँ, जिना कर लूँ, लवातत कर लूँ, बदनिगाही कर लूँ, पर अजनबी औरत के साथ बातें करके लज्जत हासिल कर लूँ, उसको छू कर लज्जत हासिल कर लूँ, ये जो दिल में इस तरह के गैर इख्तियारी बिला इरादा जो ख्यालात और वसाविस आते हैं, तो जब तक के इनको अमली जामा नहीं पहनाएगा वहाँ तक वो गुनहगार करार नहीं दिया। ख्याली खाली इन ख्यालात का आना ये गुनाह नहीं। बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मालम तामल बिही औ ततकल्लम, कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से माफ कर दिया उन चीज़ों को जिनके वसाविस और ख्यालात उनके दिलों में आते हैं जब तक के वो काम जिनका वसवसा और ख्याल दिल में आया उसको अमली तौर पर अंजाम न दे या उसको अपनी जबान से न निकाले। यानी जिन गुनाहों के ख्यालात और वसाविस आते हैं वो दो तरह के हैं, बास तो वो जिनका ताल्लुक जबान के अलावा दूसरे आज़ा से है, आँख से है, ख्याल आया मैं अजनबी औरत को देखूं और देख करके लज्जत हासिल करूं, ख्याल आया मैं गाना सुनूं और सुन करके लज्जत हासिल करूं, ख्याल आया मैं अजनबी औरत के को छूं, छू करके जो है लज्जत हासिल करूं, बुरा काम करूं, उसके साथ जीना का इर्तिकाब करूं, ख्याल आया कोई आदमी शराब का आदि था तौबा कर चुका है लेकिन ख्याल आया मैं दोबारा शराब पीऊं, ये वसाविस ये ख्यालात जो आते हैं खुद ब खुद, गोया एक तो जबान के अलावा दूसरे आज़ा से जितने भी काम अंजाम दिए जाते हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो, हाथ हो, पांव हो, शर्मगाह हो या और कोई, और एक है जबान का अमल। जबान से जो अमल होता है उसको कलाम से ताबीर किया जाता है, चूंकि दूसरे आज़ा से वजूद में आने वाले अमाल के मुकाबले में जबान से वजूद में आने वाले अमाल का एक मुस्तकिल बहुत बड़ा सिलसिला है, इसलिए आम तौर पर नुसूस में उसको अलग से जिक्र किया जाता है। तो यहाँ ये गोया मालम तामल भी ही औ ततकल्लम, दिल में ख्याल आया मैं फलाने के जो है उयूब को लोगों के सामने बयान करूँ, वो उयूब जो वाकयतन उसके अंदर हैं और उसके बयान करने ही को शरीयत कहती है गीबत, नहीं है और बयान करेंगे तो वो गीबत नहीं बल्कि वो तो बोहतान है। तो जो वाकयतन जो बुराइयाँ उसके अंदर हैं, आपका जी आपको उभर रहा है कि लोगों के सामने उसका इजहार करो, तो ख्याल आया लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। इसी तरह ख्याल आया कि कोई ऐसी चीजें जो उसमें नहीं है और मैं बयान करूं जिनका जिसको बोहतान से ताबीर किया जाता है, ख्याल आया कि मैं किसी का मजाक और ठट्ठा उड़ाऊं लोगों के सामने, उसको हकीर और रुस्वा करने के लिए उसके मुतालिक जो है ऐसी बातें करूं ताकि वो एक खिफत और अपनी हकारत महसूस करे, जो ठट्ठा किया जाता है उसमें यही होता है। तो बहरहाल ये बहुत सारे वो काम हैं जो जबान से अंजाम दिए जाते हैं। तो खाली ये ख्याल आना कि मैं अजनबी औरत को देखूं, बदनिगाही का ये वसवसा ख्याल इरादा, या गाना सुनने का वसवसा, टीवी देखने की आदत थी, तौबा कर चुका है लेकिन बार बार दिल में ख्यालात आते हैं, मोबाइल के ऊपर फहश तस्वीरें देखने की आदत थी, लत थी, तौबा कर चुका है लेकिन फिर भी दिल में बार बार तकाजा हो रहा है, तो ये जो वसाविस वसवसा का दर्जा है, तो जब तक के ये ख्याल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबरक तआला ने मेरी उम्मत से उसको क्या कर दिया, माफ। आदमी यूं ना समझे कि इस तरह ख्याल आने की वजह से मैं क्या बन गया, गुनहगार बन गया, नहीं। गैर इख्तियारी इन ख्यालात का आना गैर इरादी तौर पर यह गुनाह नहीं है। हां, इन ख्यालात के तकाजों पर अमल करेगा, ख्याल आया कि मैं मोबाइल पर फहश तस्वीरें देखूं और फिर उस पर अमल किया, अब गुनहगार हुआ। जब तक अमल नहीं करेगा गैर इरादी तौर पर, ऐसा ख्याल और वसवसा आने से गुनाह नहीं हुआ। ख्याल आया मैं गाने सुनूं गैर इरादी तौर पर, वसवसा, तो जब तक के सुनेगा नहीं वहां तक गुनहगार नहीं होगा। अजनबी औरत के जिस्म को हाथ लगाऊं, मौका है, मजमा है, बस में, ट्रेन में, लेकिन नहीं, अपने आप को उससे बचा लिया, तो ये ख्याल आना गुनाह नहीं है जब तक के अमल नहीं करे। ऐसे ही जबान से जो तो मालम तामल भी ही और ततकल, वो गुनाह अगर जबान के अलावा दूसरे आजा से अंजाम दिया जाता है, तो जब तक आप उस उज्व के जरिए से उस गुनाह को अमली जामा न पहनाएं, वहां तक महज ख्याल और वसवसे की वजह से गुनाह नहीं होगा। वो गुनाह जबान से सादिर होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया, गीबत है, बोहतान है, और किसी का ये जो है ठट्ठा है, और बहुत सारे गुनाह जो जबान से किए जाते, महज उनका ख्याल और वसवसा आया, लेकिन आपने जबान से उसको अमली जामा पहनाया नहीं, तो आप गुनहगार नहीं। उसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो ये गोया हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह तबरक तआला का इनाम है कि इन गुनाहों के ये ख्यालात जो गैर इख्तियारी तौर पर आते हैं, उन ख्यालात के आने की वजह से आदमी गुनहगार होता नहीं। हाँ, अलबत्ता ऐसे मौके पर हमारा फरीजा है कि इन ख्यालात से मुतासिर होकर और उसका असर कबूल करते हुए हम इन कामों को अंजाम न दें, बल्कि इन वसाविस और ख्यालात के आते और उसका दबाव होने के बावजूद आप कोशिश करके, मुजाहदा करके, मेहनत करके अपने आप को इन गुनाहों के कामों से रोकेंगे तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। तो यूं कह सकते हैं कि इन ख्याल गुनाहों के इन ख्यालात और वसाविस ने आ करके आपके नामा आमाल में कुछ नेकियों का जखीरा इस लाइन से करवा दिया कि आपको अल्लाह ने हिम्मत दी और आपने अपने आप को उन गुनाहों में मुब्तला होने नहीं दिया। समझाया क्या नहीं? तो ये गोया ये तरी ये तकवा अल्लाह मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये आदमी के तकवा का, जैसे आप हम्माम होता है ना, ये टंकी होती है, टंकी के नीचे जो है अलग से इंतजाम होता है टंकी के पानी को गर्म करने के लिए, तो उसमें सोख्ता यानी गुजराती में बर्तन जिसको कहते हैं, जलाने का के लकड़ियां डाल करके उसके जरिए से उसको गर्म करते हैं। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के तकवा का हम्माम जो है ना, वो इन वसाविस और ख्यालात की वजह से गर्म रहता है। गर्म रहता है का मतलब यह है कि इन गुनाहों के ख्यालात और वसाविस आते हैं और आदमी उनको अमली जामा पहनाने की ताकत रखने के बावजूद अपने आप को उससे रोकता है, तो उसके इस तरह रोकने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको क्या दिया? सवाब दिया। गुनाह का ख्याल आया और आप कर सकते थे, उसके बावजूद आपने अपने आप को उस गुनाह से रोका, करने नहीं दिया, तो ये क्या होगा? आपके नामा आमाल में सवाब लिखा जाएगा। तो गोया ये तकवा का हम्माम जो है, ये इन शहवानी ख्यालात और इनकी वजह से गर्म रहता है का मतलब ये है कि ये ख्यालात न आते, आप न रोकते, तो आपको मुजाहदे का जो सवाब मिला वो न मिलता। आज तो समझ में आई कि नहीं। तो महाराज कहने का हासिल यह है कि गुनाहों के वसाविस और ख्यालात का आना ये गुनाह नहीं है, उनकी वजह से आदमी को गमगीन होने और परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तो एक शैतान का वसवसा होता है, शैतान अपने इन वसवसों के जरिए से, कल बतलाया था कि वो आपके दिल से गोया बातें करता है, आपके दिल में इन गुनाहों की बातें डाल करके आपको इन गुनाहों के करने पर आमादा करता है, उसकी कोशिश ये होती है। तो गोया महज इसकी वजह से आपके नामे आमाल में गुनाह नहीं, आपको तो बचना है, अपने आप को इन गुनाहों के कामों से दूर रखना है, उसी को हुजूर ने फरमा दिया। तो गोया दे दो भाई, इनका क्या है, है? उनका कोई आप बैठ जाएंगे ना, वैसे ही बैठ जाएंगे, कोई हरत नहीं, वहीं बैठो आराम से मिल जाएगा। इस हालत में बैठेंगे तो अभी 70 दफा हुआ है, फिक्र नहीं, मिल जाएगा। आप जरा हट जाए, इनको उधर टेक लगाने का मौका दो ताकि इधर कुरान पर इधर लगा सके, बस। तो पहला ये जो बुखारी शरीफ की रिवायत मैंने पेश की उसका मकसद सिर्फ यही है कि महज गुनाहों के ख्यालात के आने की वजह से आदमी जो परेशान होता है उसको परेशान होना नहीं। हाँ, उस वक्त हमें एक काम करना है और वो ये है कि इन ख्यालात का मुकाबला करके अपने आप को इन वसाविस और ख्यालात के जरिए से जिन गुनाहों की तरफ हमें शैतान ले जाना चाहता है अपने आप को उसमें मशगूल होने से बचाना है, ये अलबत्ता करना है। तो ये नफ्स ख्यालात उस सूरत में गुनाह नहीं बनेंगे। इनको क्या कहते हैं, आप क्यों फिक्र करते हैं, हो गया तो बात ये है। कुर्ता तो पहन लिया इन्होंने, वो आपका कुर्ता ढूंढने उधर बाहर गया तो कई लोग कहते हैं उसका कहीं एहतिकाब ना टूट जाओ। तो बात इसकी चल रही थी कि ख्यालात और असाविश की वजह से आदमी को जो दिक्कत होती है, चूंकि एक आदमी दीन की राह पर चलने का इरादा कर चुका है, चल रहा है, नेकी के रास्ते को आपने इख्तियार कर लिया है, अब इस नेकी के रास्ते के इख्तियार करने के बाद इस तरह गुनाहों के कामों का के ख्यालात और वसाविस का आना ये आपके लिए तकलीफ का बाइस है। लेकिन ये मुजाहदा ये तकलीफ तो रहेगी। इन्नम नजवा मिन शैतान लियहज़ुनल लदीना आमन, ये सरगोशी ये जो अंदर दिल में बातें डालता है वो शैतान डालता है, और ऐसा करके वो ईमान वालों को गम में तकलीफ में मुब्तला करना चाहते, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो हमको वहां नेकी के रास्ते से हटाने के लिए मेहनत तो करेगा। भाई आप दुनिया में देखते हैं ये जितने भी गुनहगारों के जो है ना ये क्या कहते हैं ग्रुप रहते हैं, जो नौजवान बेचारे इनके इन ग्रुप वालों के फंदे में आ चुके हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि वो निकलना चाहते हैं तो भी वो निकलने देते नहीं, वो जो उनके ऊपर बॉस होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह, और अगर कोई गया तो फिर दोबारा उसको शकंजे में लाने की मेहनत की जाती है। शैतान जो है, आज तक एक आदमी गुनाह के रास्ते पर चलता रहा और उसके उस गुनाह के रास्ते पर चलने की वजह से शैतान को जो खुशी होती थी, अब ये तौबा करके जब नेकी के रास्ते पर चला है तो भला शैतान को कैसे चैन आएगा। उसका पूरा लश्कर इस कोशिश में है कि हमारा आदमी फिर दोबारा हमारी टोली में आ जाए। उसने जो पार्टी बदली है हमारी पार्टी में दोबारा आना चाहे, उसकी कोशिश यही रही। इसीलिए वो पूरी इसमें लगा रहता है। और कम से कम आ न जाए तो उसको हम क्या है जहनी तौर पर तकलीफ में तो मुब्तला करें। वो क्या, वही जो वसाविस डालता है, इन वसाविस की वजह से नेकी की राह पर चलने वाला यह आदमी अपने दिल में एक गम की कैफियत महसूस करता है कि बुरे ख्यालात क्यों आ रहे हैं। बहरहाल उसके इस तरह ख्यालात डालने की वजह से लैसा बेदार नहीं शया, तो वो कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं। बहरहाल ये एक मुजाहदा है, सवाब हमें मिलेगा। दूसरा, कुछ ख्यालात जो होते हैं वो मामला अल्लाह ताला की तरफ से बाद मर्तबा ये ख्यालात ही तक काम को और मसले को महदूद रखवा कर अल्लाह ताला की तरफ से आपको गुनाह से बचा लिया जाता है। ये इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक आदमी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इन्नी उहद्दिसु नफ्सी बिशय, कि मैं अपने जी से कुछ बातें करता हूँ। आदमी वो गुनाह के जो ख्यालात तसव्वुर आते हैं, तो ये वसाविस और ख्यालात क्या हैं कि आदमी के जी में जो है गर्दिश कर रही है एक चीज। ला नकून हममतन अहब्बु इलैय मिना नतकल्लम बिहा, वो आदमी कहता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं कोयला बन जाऊं, ये मुझे ज्यादा पसंद है इसके मुकाबले में कि मैं अपने उन ख्यालात का अपनी जबान से इजहार करूं। एक दीनदार आदमी, जैसे हम और आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, दीन का लेबल लगा हुआ है, दीनी शक्लो सूरत बनाए हुए हैं, दीनी कामों में मशगूल हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद हम में से कोई है जो इन वसाविस और ख्यालात से बचा हुआ हो? ख्याल आता है कि भाई जीना का ख्याल आया, कोई हसीन औरत मिल जाए मैं उससे अपनी ख्वाहिश को क्या करूं, गैर इख्तियारी ख्याल है, आदमी का उस पर बस चलता नहीं है। यानी वो कोई आदमी खुद ना थोड़ा रहा है, वो तो खुद ब खुद ये ख्याल दिल में आ रहा है, तो आ रहा है। तो अब गोया ये ख्याल आया कि किसी हसीन औरत से मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, या एक आदमी शराब पीता था तौबा कर ली है, लेकिन अब फिर ख्याल आया कि मैं शराब पीकर फिर लज्जत हासिल करूं। तो ये जो ख्याल ये नफ्स में, ये जो अपने नफ्स से बातें करता है, तो एक दीनदार आदमी को भी ये सारी सूरतें पेश आती हैं। एक तो वो बातें वो थी जो ईमानियत से मुताल्लिक, जैसा कल बतलाया था, और एक बातें वो भी हैं जो गुनाहों से मुताल्लिक, यानी ईमान से मुताल्लिक नहीं, गुनाहों के जो ख्यालात, और यूं हो जाए तो मैं यूं कर लूं, मुझे ये मौका मिल जाए तो मैं ये काम कर लूं, गुनाह के ख्याल आ रहा। अब ये जो दिल में ये वसाविस आ रहे हैं, ला नहीं रहा है, लाएगा तो जैसा कि मैंने बतलाया उसमें तो गिरफ्त है, लाए बगैर गैर इख्तियारी तौर पर जो आ रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि जिनको किसी के सामने बयान नहीं कर सकते। ऐसा किसी हसीन औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करने का ख्याल मेरे दिल में आया, अब जाहिर है क्या मैं इस ख्याल का इजहार आपके सामने करूंगा, कर सकता हूं? मेरा जी मुझे किसी हाल में भी इसकी इजाजत नहीं देगा। मेरा नफ्स मुझे कहेगा अरे क्या ख्याल आया, वो आया अपनी जगह पर, लेकिन उसका इजहार किसी के भी सामने नहीं। कमाल की बात तो यह है कि शौहर अपनी बीवी के सामने भी इसका इजहार नहीं करेगा। आदमी अपने पक्के जो है पक्का दोस्त, लंगोटिया दोस्त जिसको कहते हैं, जिसके सामने उसके अपने सारे राज होते हैं, उनके सामने भी ऐसे ख्यालात का वो तज़किरा नहीं करता कि मेरे दिल में यूं आया यूं आया यूं, ऐसी कोई औरत मिल जाए तो मैं यूं कर लूं, उसका बोसा दे दूं, उसको लिपट जाऊं, उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। वो चाहे ये ख्याल आया हो लेकिन वो उसको बयान ला नकूना हममतन, वो जो वो आदमी कहता है कि मैं कोयला बन जाना पसंद करता हूं, लेकिन उन ख्यालात का इजहार अपनी जबान से हो ये मुझे गवारा नहीं है। नहीं ये सारे ख्यालात और हर एक को आते हैं और हर एक को इन ख्यालात से वास्ता पड़ता है। अब ये ख्यालात जो आए कि किसी हसीन औरत के साथ जिना करने का ख्याल या एक शराब की आदत थी शराब दोबारा पीने का ख्याल चोरी की आदत थी चोरी दोबारा करने का ख्याल गुनाह के काम का ख्याल आया अब और वो ऐसा ख्याल था जिसका वो इजहार कर सकता नहीं है अपने लिए नागवार नागवारी में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये सवाल सुनकर क्या फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहू इलल वसवसती के हुज़ूर का जवाब बड़ा जामे है और बड़ा तसल्ली देने वाला है। क्या आप फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इसका मामला वसवसे तक महदूद कर दिया। इसका मामला यानी रद्द अमरहू इस हदीस की शराह करते हुए शुर्राए हदीस ने अमरहू में हु की जमीर का मर्जा शैतान को भी बतलाया है और हु की जमीर का मर्जा ये आदमी जिस जो वसवसे का शिकार है उसको भी बतलाया है। अगर इससे मुराद आदमी लिया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसका मामला जो है वो खाली वसवसे तक महदूद रखा यानी अल्लाह ने आपको गुनाह में मुब्तला होने नहीं दिया खाली दिल में ख्यालात आके मामला निमट गया है क्या नहीं खुश होने की चीज खुश होने की चीज। खुदा ना खास्ता अगर मुब्तला हो गए होते तो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ते। गोया अब देखो इस ख्याल के आने की वजह से तबीयत पर एक गिरानी थी और बेचैनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब के मफहूम को अगर हम गौर करें एक मसर्रत होती अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जो है बहुत मुख्तसर में निमटवा दिया जिना में मुब्तला होने की नौबत आने नहीं दी है ना। कितना ये हु की जमीर का मर्जा लौटाएं किसकी तरफ साहिबे वसो और अगर हु की जमीर का मर्जा लौटाएं शैतान की तरफ तो उसका मतलब भी यही होगा कि शैतान तो चाहता था क्या कि आपको जिना में मुब्तला करे वो तो सारे सामान तैयारियां करके आया था हमला करने के वास्ते कि किसी भी तरह आपसे जीना करवा के रहेगा और उसने आपके दिल में वसवसे डाले बार बार मेहनत की बार बार ख्याल लाया कि ये किसी भी तरह मेरे बहकावे में आकर के जीना के अंदर मुब्तला हो जावे लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी ऐसी हिफाजत फरमाई कि ये सारे ख्यालात ख्यालात ही रहे उन पर अमल की नौबत नहीं आई। उसी को हुजूर फरमाते हैं तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने उसका मामला किसका मामला शैतान का मामला खाली वसवसे तक महदूद रखा। उसको एक मिसाल से यूं समझो कि आपका कोई दोस्त सफर कर रहा था कार में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से बड़ा जख्मी अस्पताल में पांव टूटे हुए हैं हाथ टूटे हुए हैं आप खबर लेने के लिए गए भाई क्या हाल है अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई खाली पांव टूटे हाथ टूटे पांव का टूटना क्या कोई शुक्र की नहीं पांव का टूटना शुक्र की चीज नहीं है शुक्र की चीज क्या थी जान का बचना। बोया एक्सीडेंट तो बहुत खतरनाक था जिन्होंने भी वो गाड़ी देखी एक्सीडेंट वाली सब ये कहते हैं कि ये बच कैसे गया यार तो ये शैतान जो मेरे ऊपर हमला लेकर के आया था उसके इरादे से कोई दुश्मन आपका हो उसने आप पर कातिलाना हमला किया वो तो आया था आपको जान से मार डालने के लिए ही लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका खाली कान कट गया खाली एक हाथ कट गया। अब आपकी खबर लेने कोई आएगा तो आप क्या कहेंगे अल्लाह का शुक्र है अरे भाई अल्लाह का शुक्र हाथ कटने पर हाँ हाथ कटने पर जान तो बच गई समझ आए कि नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहू इलल वसवसती गोया शैतान तो बड़े हौसले लेके आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कामयाब होने। अब मैं अगर आपको यूं कहूं, आप मेरे सामने अपने इसी वसवसे को बयान करें, जो बयान करने के लिए आपकी तबीयत तैयार नहीं, लेकिन आपने हिम्मत करके कर लिया कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया, बार बार वसवसा आता है कोई हसीन औरत मुझे मिल जाए और मैं जो है उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करूं और ये सब, और ये वसवसा बयान करके आप रो रहे हैं, तो मैं आपको तसल्ली में अगर यूं कहूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो ना कि मामला कहां तक रहा, वसवसे तक रहा। अल्लाह ताला ने जिना में मुब्तला होने की नौबत आने नहीं दी। तो अब वो जो वसवसा आने की वजह से आपके दिल पर गम की एक कैफियत थी, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब बहुत खुश हो, बहुत अच्छा, एक तसल्ली हो गई। नबी करीम सलासन के जवाबात जो हैं बड़े जाम हैं, आपकी आपकी तरबियत, आपकी तालीम, तो गोया कहने का हासिल यह है कि हम लोग इन वसाविस और ख्यालात को जो बुरा समझते हैं, उस सिलसिले में भी एक रहनुमाई मिल गई और हमको गोया आप सलासन की तरफ से ये बताया गया कि भाई वो जो तुम्हारा दुश्मन है वो तो तुमको इसी में डालना चाहता था, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत फरमाई और मामला खाली वसवसे तक रहा और वो नाकाम होकर के गया। तो अब हमारे दिल को एक नौकी क्या हासिल हो जाएगी, तसल्ली हासिल हो जाएगी। तो ये वसवसे के अंदर भी जो तक हमने एक घुटन महसूस की थी, एक गम की कैफियत थी, वो दूर हो गई। तो बहरहाल यहां शैतान के वसाविस जो होते हैं, शैतान का हमला, उसके असरात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसी हदीस की तशरीह करते हुए हजरत शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि भाई देखो, एक तो होता है मौसिर और एक होता है मुतासिर, एक है अपना असर डालने वाला और दूसरा वो जो असर को कबूल करता है। तो असर मुतासिर जो होता है, मुतासिर के मुख्तलिफ होने की वजह से मौसिर की तासीर का असर भी अलग अलग होता है। एन दोपहर के वक्त गर्मी के जमाने में सूरज जब बिल्कुल आसमान के ऊपर हो, सर के ऊपर हो, सख्त गर्मी ये जून जुलाई की, अब ये सूरज की किरणें और धूप, ये सूरज मौसिर है, उसकी किरणें और धूप मुख्तलिफ चीजों पर पड़ रही है, उसकी ये किरणें पीतल पर भी पड़ रही है, पीतल पर पड़ेगी तो इन किरणों की वजह से पीतल इतना गर्म हो जाएगा जैसे कि आग है, हम अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। लोहे पर भी पड़ेगी, लोहा भी, लेकिन पीतल के मुकाबले में उसमें कुछ कम। यही किरणें उसी वक्त पत्थर पर भी पड़ रही है, तो पत्थर में भी गर्मी आएगी, गर्म होगा, लेकिन वो लोहे से कम। यही किरणें उसी वक्त पड़ रही है लकड़ी के ऊपर, तो जिन लकड़ियों पर पड़ रही है वो भी गर्म हो रही है, लेकिन ऐसी नहीं कि आपको आपका हाथ जल जावे। यही किरणें पड़ रही है सब्ज घास पर, बाग की, वो सब्ज घास पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन वो नहीं जो लोहे और पीतल और पत्थर के ऊपर पड़ा था। और एक पत्थर ऐसा भी है, जो लोग हज में गए हैं, तवाफ करते हैं, जानते हैं कि पत्थर होने के बावजूद ये किरणें उस पर पड़ती है, कोई असर नहीं, ठंडा का ठंडा। समझा कि तो शैतान का ये हमला एक ही अंदाज का, वो हमले में कमी नहीं करता, उसका हमला तो 100% जोरदार ही होता है कि वो जो कर मैं कहा चाहूं वो करवा लूं, लेकिन जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिनके ऊपर अटैक हो रहा है मुतासिर, उसकी हालात अलग होने की वजह से असरात भी। एक पत्थर लेकर आपने मारा, अगर वहां शीशा है तो पत्थर की वजह से वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। पतरा है तो वो जो है उसकी वजह से मुतासिर होगा, लेकिन चूर चूर ऐसा नहीं। वहां कोई जो है कागज है तो वो उसका उसके मुताबिक, दीवार है दीवार मिट्टी की है, पत्थर की है, तो ये जो जाने वाला पत्थर है उसके असरात उसके मकाम के एतबार से अलग। ऐसे ही आपके दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि आप किसी हसीन औरत के साथ जिना करें, वो तो इसने कोशिश यही की थी कि आपको हसीना के साथ जिना में मुब्तला करे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने जो है उसका असर होने नहीं दिया और मामला महदूद रखा। कहां तक? वसवसे तक। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये शैतान के इन हमलों की मुख्तलिफ तफसीलात हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जवाबात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात साहबा, तो ये गुनाहों के जो ख्यालात आते हैं, गुनाहों के इन ख्यालात की वजह से जो है वसाविस की वजह से गमगीन होने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अलबत्ता उस वक्त आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। इसलिए कि जब शैतान हमला करता है तो अल्लाह की हिफाजत के बगैर शैतान के इस हमले से अपने आप को बचाना मुश्किल। अल्लाह अगर हिफाजत न करे तो वो गुनाह करवा के रहे। इसलिए हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि भाई तुम उस मौके पर मेरी पनाह हासिल करो। एक बच्चा है, उस बच्चे को कोई आदमी मारेगा तो बच्चा उस मारने वाले का मुकाबला कर सकता नहीं है। वो क्या करेगा? बाप के पास आकर के उसकी कमर में हाथ डाल करके लिपट जाएगा और बाप से कहा, अब्बा ये मुझे मार रहा है, गोया इसके हमले से आप मुझे बचाइए, मैं नहीं बच सकता। इसी तरीके से शैतान हमें गुनाह में मुब्तला करना चाहता है तो हमें बार बार अल्लाह की पनाह हासिल करने की जरूरत। हमारी कमजोरी ये है कि हम उन मौकों पर भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते और उसी की वजह से दिक्कत का शिकार हो। आज हमारी ज़हनियत जो है ना खालिस दुनियादारी वाली बन गई, दुनियादारी वाली ना असबाब पर नजर, मुसब्बिबुल असबाब पर नहीं। जो हमारे हालात पेश आते हैं जिंदगी में मुख्तलिफ, कोई मुसीबत पेश आई तो उस मुसीबत के सिलसिले में आम मिजाज क्या हो गया कि उस मुसीबत से बचने या उसको दूर करने के लिए मादी तौर पर जो तदबीरें हो सकती हैं वो आदमी करता है। हालांकि उसमें भी उन तदबीरों के साथ साथ जरूरत थी काई की कि तदबीर के साथ दुआ भी करता कि अल्लाह ये इस मुसीबत को तू दूर फरमा दे। और यहां शैतान का मामला ऐसा है कि वो तो मादी तदबीरों से हल होने वाला ही नहीं है। इसीलिए शैतान के हमले में हम लोग क्या हो जाते हैं, एकदम गोया हवास बाख्ता हो जाती है। वही माना कि इसके हमले को हम ये उस वक्त तक जहन में ये होता ही नहीं कि शैतान का हमला है, हम उसको दूर नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी मदद करेगा तो हम दूर करें। हजरत यूसुफ अल्लाह नबियाना वाली सलाम, वो जनाने मिस्र ने आपको जब वरगलाना चाहा तो क्या अल्लाह रब्बी सिजनो अहब्बो इलैया मिम्मा यदउनी इलैहि वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बो इलैहिन्न वाकुम मिनल जाहिलीन। ये अल्लाह ये औरतें मुझे जिस हरकत की जिना की दावत दे रही है उसके मुकाबले के अंदर जेल में जाना मुझे गंवारा है, पसंद है। और ये अल्लाह अगर तू इनके इस कैद को और इनके गोया इस हमले को मुझसे दूर नहीं करेगा तो मैं ऐसा नहीं हूं कि खुद दूर कर, अस्बो मुझे डर है कि मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और मैं भी खुदा ना खास्ता जहालत का इर्तिकाब कर लूंगा। तो गोया हजरत यूसुफ अला नबियाना वाली सलात वसलाम जैसे पैगंबर जब ये दुआ कर रहे हैं तो हमें और आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत। इसलिए ये तावुज हदीस के अंदर अल्लाह की पनाह हासिल करने की जो शक्लें बतलाई, इसीलिए मौका जहां शैतान का कोई ऐसा मामला आता है हदीस हमें यही तालीम देती है कि आप तावुज के जरिए से अल्लाह की पनाह अव्वलीन मरहला में जरूरत है अल्लाह की तरफ रुजू, और उसमें भी हमारी तरफ से बहुत ज्यादा कोताही पाई जाती है, उसका एहतमाम होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा यह है कि गोया शैतान के हमले को, गोया उसके मौके, उसका हमें मौका भी, हम क्या करते हैं। अब एक आदमी बीमार था, अभी भी उसका इलाज हुआ, बीमारी से बाहर निकला, तो डॉक्टर लोग उसको ताकीद करते हैं, तुम्हें फला जगह नहीं जाना है, तुम्हें इस माहौल में नहीं जाना है, तुम्हें उस फिजा में नहीं जाना है, इस हर चीज से बहुत ज्यादा बचने की, तुम जगह गए तो अभी तो तुम्हारा मामला अभी बहुत मुश्किल से काबू में आया है, फौरन तुम पर यह बीमारी दोबारा हमला कर सकती है। लेकिन हमारा हाल यह है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद भी हम अपने आप को ऐसा मजबूत समझते हैं, क्या करते हैं, फिर वही माहौल, वही माहौल जिस माहौल की वजह से इस बुराई में मुबतला हुए, वही दोस्त लोग, उनकी दोस्ती नहीं छूटती। हालांकि अव्वलीन मरहले में अपने आप को उनसे दूर करना जरूरी, ये दोस्ती जो है ना, कि अलमर वाला दीन खलीली फल यंजुर मैं युखालिल हो, आदमी अपने दोस्त की रविश पर होता है, किससे दोस्ती करता है देखो। तो बहरहाल ये हम नेकी के राह को इख्तियार तो करने की तदबीरें करते हैं, लेकिन उसकी जो रुकावटें हैं उनको दूर करने का एहतमाम नहीं करते। ये बहुत अहम है आजकल। अब जैसे आप यहाँ आए, 10 दिन रहे, एक माहौल मिला, यहां से जाते ही वही दोस्त, वही पार्टी आपकी, वही आपका ग्रुप, वो आपके इंतजार में बैठा है, आप पहुंचते ही वो आपके इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, और आप भी गले मिलेंगे, और उनसे मिलकर के क्या होंगे, खुश होंगे। फिर क्या रहेगा बाकी, कुछ नहीं, वो एक ही मुलाकात में जो कुछ लेकर के गए थे वो सब साफ हो जाएगा। पहले जरूरी है अपने आप को उस बुराई, उस माहौल से निकालना। ये तो ऐसा ही है कि एक बच्चा है, एक आदमी है, वो नजासत के घड़े में पड़ा, उसको निकाल करके उसका बदन धोया, कपड़े धोए और साफ करके पहनाया, खुशबू लगाई, फिर दोबारा जैसे बच्चा होता है, बच्चा नजासत में मुलव्वस होता है, माँ उसको नहला धुला करके ये करती है, फिर दोबारा जैसा था वैसा का वैसा है। हमारा हाल ऐसा ही नहीं, अपने आप को बचाने की जरूरत है। ये जो कुछ मेहनत करके थोड़ा बहुत हासिल किया, उसको बचा कर उसमें मजीद कुव्वत पैदा करने के लिए आगे तदबीरें इख्तियार करनी, उसके बजाय हम तो वो जो थोड़ा मिला उसी को जाया कर देते। इसलिए ऐसे ऐसी दोस्तियां, ऐसा माहौल, इससे अपना ऐसा लिटरेचर, उससे बचते नहीं। और क्या समझते हैं, ये दोस्त नाराज हो जाएगा, बड़ी बात क्या आती है रुकावट वहां, यार हमारा दोस्त है, उसका दिल टूट जाएगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी की दिल शिकनी से बचने के लिए अपनी दीन शिकनी, दीन शिकनी, उसका दिल टूटने से बचाने के लिए अपना दीन तोड़ रहे हैं। शरीयत तो किसी हाल में भी कोई ऐसा काम, किसी की जिनकी इताअत शरीयत ने वाजिब करार दी है, बीवी के लिए शौहर की इताअत, औलाद के लिए माँ बाप की इताअत वाजिब करार दी गई, वहां भी शर्त है ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की नाफरमानी जहां आती हो वहां उनकी इताअत नहीं की जाएगी। और हम यहाँ ये कर रहे हैं दोस्तों का दी, और दुनिया का दो पैसे का भी नुकसान हो तो उस दोस्त से कट्टी करने के लिए तैयार, ये भी हमारा मिजाज। वहां नहीं देखते कि ये दोस्त नाराज हो जाएगा, वहां हमारे दो पैसे का नुकसान हो रहा था ना, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए फौरन सारे ताल्लुकात खत्म, ना कल से आप हमारा तुम्हारा कोई है नहीं, और दीन के खास दीन की हिफाजत के लिए ये करने के वास्ते थे, क्यों हमारे कुलूब के अंदर दीन की अहमियत नहीं। तो हकीकत तो ये है कि भाई उस माहौल से ऐसा लिटरेचर, ऐसी चीजें, ऐसी दोस्तियां, ऐसी बातें, हर वो चीज जो दोबारा उधर हमें मुतवज्जे कर सकती है, उससे अपने आप को बचाना नहायत जरूरी है। उसके बगैर ये तौबा बाकी रहने वाली नहीं है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि गुनाहों के वसाविस अगर आते हैं, लेकिन जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि ये वसाविस, वसाविस का आना तो गैर इख्तियारी है, लेकिन वसाविस आने के लिए कुछ असबाब ऐसे हैं जिनको हम अपने इख्तियार से इस्तेमाल करते हैं, और उसके नतीजे में, जैसे कल कहा था कि जहाँ मच्छर बहुत हो, असर के वक्त से ही खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, मच्छरदानी भी होती है फिर भी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी ज़रूरत है कि ऐसी दोस्तियाँ, ऐसा माहौल, ऐसा लिटरेचर, ऐसी चीज़ें, हर एक से अपने आप को बचाएं, किसी हाल में भी इसको गवारा ना करें। कल मैंने वाक्य बयान किया था, हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह इतने जलील कद्र ताबी, वो एक जो है बदअकीदा आदमी की जबान से कुरान पाक की आयत तक को सुनना गवारा नहीं करती, और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल ये गुनाहों के वसवसे, तो ये गुनाहों के वसवसे जो हैं वो उसकी तफसील आपको बता दी। उससे बचने का भी यही तरीका है कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखें तो इंशाल्लाह हिफाजत होगी। बाकी खाली इनके आने की वजह से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम इतना ही है कि हम उनका मुकाबला करें। लेकिन एक बात याद रखना कि जब इन वसाविस को आने ही न दिया जाए, यानी वो असबाब जैसे मैंने कहा ना, ऐसी सोहबतें, ऐसा लिटरेचर, ऐसा माहौल, वरना ये वसाविस का मुकाबला देर तक हम कर सकेंगे नहीं। ये जो बुराई का ख्याल आ रहा है ना, आज तो हम मुकाबला करके बच रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत हिम्मत है, लेकिन धीरे धीरे वो वसाविस इतने गालिब होंगे कि वो आपको गुनाह में डाल के जाएंगे, शैतान कुव्वत हासिल कर लेगा। इसलिए इससे अपने आप को बचाने के लिए जो तदबीरें हैं उसकी इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये दूसरी किस्म थी वसाविस की। तीसरी किस्म है जो वसाविस तो बुरे नहीं हैं लेकिन वो बेमौका आते हैं। नमाज की नीयत बांधी, आप दुकान पर पहुंच गए, नमाज की नीयत बांधी, बीवी बच्चों में फंस गए, तो बीवी बच्चों से बातें करना कोई गुनाह का काम नहीं है, लेकिन वो नमाज के दौरान उसका ख्याल ही अच्छा नहीं, कुरान खोल करके बैठे तिलावत करने के लिए और ख्याल आ गया बीवी का, दोस्त का, या जो है दुकान का। तो ये जायज मुबाह चीज़ें हैं, लेकिन वो इबादत के दौरान ये ख्याल आते हैं, तो उसके मुतालिक भी मुख्तसर चीज़ें इंशाल्लाह फिर अर्ज़ करेंगे।